जबकि यात्रा में आते हैं हम लोग नवद्वीप में, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि आप सबको कोई ऐसी चीज दें जो आप अनंत काल के लिए अपने पास रख सकें। तो प्रारंभ हुआ था 1863 से, तो हम चाहते थे कि वो ये बात सब समझे, तो उस सत्र की वजह से सबको काफी लाभ हुआ। तो उसी प्रकार से आज का भी एक विषय है, जैसे 1863 यथा इच्छा से तथा गुरु, ये कोई दुर्भाग्यवश कोई नहीं पकड़ पाया और वंचित रह गया कितने आध्यात्मिक सुदुर्लभ मोतियों से। उसी प्रकार से आज का भी एक विषय हम चाहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि साधक समाज में जैसे ये दिस टॉपिक जस्ट डजंट एग्जिस्ट, और इसके बिना दूसरे अध्याय का प्रारंभ ढंग से शुरू भी नहीं हो पाता, दूसरा अध्याय बाकी तो छोड़ देंगे। तो ये विषय समझना हमें लगता है बहुत आवश्यक। तो ये हमारा सत्र प्रवचन जैसा हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि सर को लाभ हो। आप लोग गीता लाए हैं, गीता निकालिए, दूसरे अध्याय का 15 श्लोक है और दूसरे अध्याय का ही 38 और दूसरे अध्याय का ही 48, 15, 38, 48। कई चीजें के बिना तो स्पिरिचुअली डजंट एग्जिस्ट, आध्यात्मिक जीवन तो हो ही नहीं सकता है। ये उनमें से यम ही न व्यथंत्यते पुरुषम पुरुषर्षभ समादुकं सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। समादुकं सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। ये भगवान है, ये शब्द नहीं है, ये बोलते हैं। जब भक्ति के कुछ धरातल पे होंगे तो आपको पता चलेगा ये बोल रहे हैं आपसे, ये बात हो रही, ये कन्वर्सेशन हो रही है आपकी, ये बात कर रहे हैं, बात हो रही। समा दुखम सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही ना व्यथंते व्यथा, यम ही ना व्यथंते, व्यथा मतलब प्रकार अननेसेसरी, जिससे विचलित की मतलब की जिससे विचलित ना होना। ये स्टार्टिंग है भगवद गीता, हमने सबने पढ़ा होगा भगवद गीता, ये तो पढ़े होंगे 2.0 लेकिन उसमें यथा देखे दिन तो मतलब पढ़ा और उसका मतलब इधर के ऐसा ऐसा ये मतलब हो सकता है या होना चाहिए, मतलब इससे हमारा जो हार्ट बीट है उसका कुछ रिलेशन है श्लोक से, इस श्लोक का और हमारे हार्ट बीट का कोई रिलेशन है? हार्ट बीट समझते हैं आप सब, हमारे हार्ट बीट का और श्लोक का तो बड़ा गहन संबंध होना चाहिए, ये हमारा मानना है, ये इतना महत्वपूर्ण है। 238 देखें थोड़ा सा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभौ जया जयो। तो दो 15 को रिलेट करें, देखें 2.15 क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, देखो साथ साथ। सम दुख में जो धीर पुरुष विचलित नहीं होता वो ही मुक्ति का अधिकारी होता है, ये सरलार्थ है, सरलार्थ। इसका क्या मतलब है? 238 बोलिए, उसी का विस्तार देखिए। यहाँ पे सुख दुख में जो विचलित नहीं होता वो मुक्ति का अधिकारी, क्या बोल रहे हैं? सुख दुखे समय कृत्वा, सेम बात बोल रहे हैं, लाभ हानि जय पराजय उसको पाप नहीं लगता, जब पाप नहीं लगेगा तो वो मुक्ति का अधिकारी होगा। पाप का ही तो परिणाम है संसार में, पाप मतलब पाप इंक्लूड्स पुण्य, पुण्य भी पाप ही है। एक पाप मतलब वो कार्य जो आपको भगवत विमुख करता हो, यानी तो पुण्य अलग है, पर और विस्तार से देखें तो पुण्य और पाप आपको यही पे लेके आ रहे हैं, समझे। सुखे दुखे समय पे स्वाप, वहां पर भी सुख दुख से। अच्छा 248 को देखना चाहिए, 247 को हम देखते हैं, सर्वण्यवाधिकार 248 देखेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। फिर बात क्या बोली जा रही है, सिद्ध्या सिद्ध्य जय पराजय सफल असफल समो भूत्वा समभाव। और यहाँ कितनी बड़ी बात बोलते हैं, रासलीला में तो प्रवेश जब करोगे दर्शन करोगे वो तो अलग बात है, ये तो समत्वम योग उच्यते, समत सम रहना यही तो योग है। क्या समझे है? मतलब हमने श्लोक का हमारे जीवन में अभी तक क्या कुछ खास इन्वॉल्वमेंट है हमारी लाइफ में, इन श्लोकों का प्रैक्टिकल में है कि नहीं है। जैसे 1863 का किसी को 50 वर्ष बाद भी मालूम नहीं होता उसका गहराई, तो ये श्लोक के बारे में कोई पाठ वचन समान्य था समस्या योग उच्चे थे सुखे दुखे समय कृत्व लाभा लाभा जया जय। गीता जयंती होती है हम पढ़ते हैं, पूरा पूरा गीता पढ़ते हैं गीता जयंती में, पर उसका वास्तविकता से हमारा क्या संबंध है हमारे जीवन से। बाकी लोग 7:28 पढ़े, 7:28 पढ़े, क्या मतलब है उसका, दूसरे पंक्ति पढ़ेंगे, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ व्रता है। इससे बोलते हैं द्वंद्व, द्वंद्व क्या है, सुख दुख और लाभ हानि मान अपमान जय पराजय कह सकते हैं। मूलता देखें तो लाभ हानि मान अपमान सुख दुख, इसमें क्या बोला जा रहा है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता, जो इन द्वंद्वों से मोहित नहीं होता, जैसे उसको गुस्सा ना आए कुछ भी हो रहा हो तो फर्क ना पड़े, वही भक्ति दृढ़ता से कर सकता है। भक्ति सिद्धि तो जब हो गई प्राप्त तो उसके लिए दृढ़ता से भक्ति करनी होगी, द्वंद्वों से मुक्त हुए बिना दृढ़ता से भक्ति भी नहीं हो सकती। सब भक्त जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का वर्षों से, कितने वर्षों से हम परिक्रमा में आ रहे हैं, अध्ययन करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो हमें प्राप्त हो जाए, इस संसार बंधन से निवृत्त हो, हमें प्राप्त हो जाए, उनके दर्शन प्राप्त हो जाए, उनकी सेवा प्राप्त हो जाए, बस वो प्राप्त हो जाए, हम उनके हो जाए। सारी सेवा किस लिए करते हैं और किस लिए करनी चाहिए, वास्तव में जीवन ही किस लिए जीना चाहिए, कि हम ये सेवा जब क्यों कर रहे हैं, हम तो उनके दर्शन करना चाहते हैं तो दर्शन दो, दर्शन हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा हृदय अभी में मैल है, जब हृदय में मैल होगी तो ठाकुर जी के दर्शन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं केवल एक उद्देश्य से करना चाहिए भक्त को, कि उससे वो मेरी शुद्धि हो, क्योंकि यदि मेरी शुद्धि नहीं होगी तो परम शुद्ध को मैं कैसे प्राप्त कर पाऊं। यही भगवत गीता में सब कुछ है, ये सुख की कुंजी है। 5वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़े, पढ़ा होगा फिर देखेंगे, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियेरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यहाँ बताया जा रहा है कि जो भक्त है कर्म योगी है वह अपनी बुद्धि इंद्रिय मन शरीर द्वारा जो भी कर्म करे वो स्वयं की शुद्धि के लिए करे। हम भक्त हैं दर्शन करना चाहते हैं तो हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारे जो भी हम कार्य कर रहे हैं
बुद्धि से, मन से, शरीर से, इशारे से, किसी भी तरीके से कुछ भी कर रहे हो, भगवान के दर्शन के लिए तो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो नहीं, तो उससे कार्य से प्रत्येक क्रिया से हमारी कायन मनसा बुद्धि केवल इंद्रिय स्पष्ट बोल रहे हैं भगवान। इसलिए संगम त्यक्त्वा कि कर्म फल त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति रहित होके हर चीज से केवल अपनी शुद्धि के लिए भगवत अर्पण कार्य सारे हो। जैसे हम गृहस्थी में हैं, तो गृहस्थी में इसलिए नहीं भक्ति कैसे कर रहे हैं कि हम तो मूलतः मानते हैं गृहस्थी हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, ये तो नहीं बोला जा रहा है। ये क्या बोला जा रहा है, जो भक्त है वो 24 घंटे सिर्फ अपनी आत्म शुद्धि के लिए कार्य करता है। उसको क्या करना है कि मैं सन्यासी हूँ कि मैं विरक्त हूँ, सन्यासी को भी आत्म शुद्धि करनी है और गृहस्थी को भी करनी है, तो हमारे को अपना मूल जो है मानना हो कि मैं कार्य तो अपनी आत्म शुद्धि के लिए करूं, किसी और के लिए नहीं करूं और अपने मन के लिए भी ना करूं। काम धंधे पे क्यों जाते हैं, सब जाते हैं, हम भी जाते हैं, भक्ति करो हम भी करते हैं। ये कौन सी आत्मशुद्धि और कौन सा योग है, योग ये योग हुआ, ये तो एक पाइटी की तरह हो गया। पाइटी माने पुण्य की मूल 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 में गृहस्थी है, साथ में भक्ति भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात तो सब ठीक है। वो संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, कायन मनसा बुद्धिया इंद्रिय स्पष्ट बोल दिया भगवान ने, खोल दिया, केवल आत्मशुद्धि के लिए ही आध्यात्म करना चाहिए। अच्छा, आत्मशुद्धि के लिए करना चाहिए मतलब आत्मशुद्धि नहीं है, अच्छा तो समस्या क्या है? समस्या वही है, यम ही ना यथंते थे पुरुषम पुरुष समा दुखा सुखम धीरम तो हमें तत्वाय कल्पते, कि सुख और दुख में विचलित हो जाते हैं। मूल समस्या क्या है, सुख और दुख में विचलित होना। सुख और दुख जो है क्या होते हैं, इसी पे चले जाएं, हम बोलते हैं विचलित होते हैं। अच्छा, जिससे विचलित होते हैं वो तो जान लो, वो क्या होते हैं सुख और दुख होते हैं कि जिससे मैं जो मेरे मन भी नहीं बोलना चाहिए, शब्द इतने सीमित हैं सत्य को वर्णन करने के, जो मन बुद्धि इंद्रिय, इंद्रिय माने आंख नाक त्वचा कान जीवा, जो इंद्रिय मन बुद्धि के अनुकूल प्रतीत होते हैं, जो व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति समझने की कोशिश करें, ये शब्दों में समझाना बड़ा कठिन है पर हम चेष्टा कर रहे हैं, जो मन बुद्धि इंद्रिय शरीर मूलतः के अनुकूल व्यक्ति वस्तु व परिस्थिति इत्यादि, ये जो अनुकूल प्रतीत होते हैं इसको हम सुख की संज्ञा देते हैं, वी टर्म ऑल दिस एज सुख। हमारे तो मानना पड़ेगा, हमारी भी क्या बात है, सुख क्या है, जिनको हम कुछ एक कंसेप्ट में डाल के रख देते हैं वो सुख है, जो एक का सुख है वो दूसरे का नहीं है। अच्छा, दुख क्या होता है, दुख होता है जो मेरा मन नहीं है, केवल समझिएगा, मेरा कुछ नहीं है, असंगो या पुरुषा, असंग ही नहीं है, मेरा कैसे होगा। दुख है कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति जो मेरे मन मेरा नहीं, जो मन इंद्रिय बुद्धि शरीर के अनुकूल प्रतीत ना हो, माने प्रतिकूल माने अनफेवरेबल लगे, उसको हम दुख देते हैं, दुख की टर्म दे देते हैं, मेरे उनके अनुकूल नहीं है तो वो दुख है। तो कितनी बार होता है जो सुख होता है वही दुख होता है आगे चल के, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उससे बड़ा सुख नहीं, थोड़ा बड़ा होके फिर दो दो हाथ भी हो जाते हैं तो फिर वही दुख बन जाता है। और पहले विवाह से पूर्व वही सुख की संज्ञा होती है, क्योंकि वो मेरे शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल है तो वो तो सुख है ही है, तो है ही सुख, साक्षात ईश्वर है वो सुख है, और जो अनुकूल नहीं है तो वो तो दुख है। लड़ाई होती है, फिर डाइवोर्स भी होते हैं, किस लिए? फिर वो दुख हो गया, वही जो सुख था वही दुख हो गया, कैसे हुआ? बस वो मेरे उसके अनुकूल प्रतिकूल हो गया, नॉट एज पर माई डिजायर। रावण मतलब जो जिसके इच्छा के अनुसार जो हो जाए तो ठीक, ना हो तो वो रावण डेमन राक्षस। तो ये जो अंतःकरण की वृत्ति है, जो भीतर की थॉट है, वृत्ति है, यही सुख दुख के रूप में हम इनको टर्म करते हैं, संज्ञा देते हैं। अंतःकरण के विचार, सुख दुख होता कुछ नहीं है वास्तव में, सुख दुख होता नहीं है कुछ भी। आत्मा के लिए क्या सुख और क्या दुख? जो धीर पुरुष है, अब आप कहेंगे धीर, धीर को हम साधा भाषा में बोले क्योंकि हमें तो ये प्रैक्टिकल करना है ना, जो बुद्धिमान है व्यक्ति, बुद्धिमान, उसको ये सुख और दुख विचलित नहीं करते। धीर मतलब बुद्धिमान, समझ बुद्धिमान को, कैसे बुद्धिमान पुरुष अच्छे से समझता है कि सुख दुख जो है ये तो केवल विचार है। सुख और दुख क्या होते हैं इसको हम ऐसे समझें कि सुख और दुख माने सुख सिर्फ एक ऐसा है कि आई हैव क्रिएटेड अ कंसेप्ट कि ये सुख है, और उसको प्राप्त करने के लिए जब तक मेरे को प्राप्त नहीं होगा मैं दुखी रहूंगा, ये होता है सुख हमारा। जैसे मेरा ये लोग मेरे से अच्छे से बात करते हैं तो जब तक नहीं करें तब तक मैं दुखी रहूंगा, ये हमारे सुख की परिभाषा है। ये क्या वास्तविकता है? और बताते हैं आपको सुख की परिभाषा क्या होती है। एक हम कंसेप्ट बनाते हैं मन के अंदर, उसको पूरा करने के लिए बस मेरे को ये करना है। तो आपने जो साल स्पेंड किए, जीवन अपने अपना लगाया, वो किस लिए लगा? एक अब कुछ प्राप्त हुआ कुछ, आप एक थॉट में सोचिए, एक विचार में वो घूमते जा रहे और 5 साल 10 साल स्पेंड कर दिए, बस 10 साल 5 साल क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया? एक विचार क्रिएट किया कि भाई ये मैं से अच्छी तरह बात करें या मेरे को लोग अच्छा कहें, क्यों भी अपना विचार क्रिएट कर लो। सब बोलते हैं ना कि बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे पिताजी हैं, बड़ा अच्छा क्या, बड़े नाइस फैमिली में, ये कुछ भी आपको सुख का कुछ भी कर सकते हो। देन मिलियंस ऑफ वेज ऑफ इल्यूजन, मिलियंस ऑफ, तो कुछ भी कर दिया और उसी विचार में घूम रहे, तो आपको मिला कुछ नहीं है। धीर पुरुष विचलित क्यों नहीं होता? उसको पता जो हो ही कुछ नहीं रहा, मिल मुझे कोई सकता नहीं है, जा मुझसे कोई सकता नहीं है, तो विचलित कैसे होंगे? मान लो अमित है, इन सब कुछ खत्म हो गया, मान लो कुछ एक पैसा भी नहीं है, सड़क क्या हो गया, रोटी दे दी, उससे क्या आपको क्या चार्ज होगा, क्या फायदा होगा? कोई भेद नहीं है, इसलिए विचलित नहीं होते। विचलित क्यों नहीं होगा? सिर्फ वही व्यक्ति विचलित नहीं होगा जिसकी दृष्टि जो समत्व की ओर रहेगी। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते, जो समता धारण करता है सुख में और दुख में। देखो प्रारब्ध अनुसार, याद रख लो, समझ लो अच्छे से, नहीं समझ आए पूछो। प्रारब्ध अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार, आपके मन इंद्रिय परिस्थिति आपके अनुकूल प्रतिकूल आपको प्राप्त होंगी ही होंगी, होंगी ही होंगी, निश्चित होंगी, जरूर आपको अनुकूल और प्रतिकूल, व्यक्ति, बच्चे, पत्नी, धन, बीमारियां, अनुकूल प्रतिकूल सब प्राप्त होंगी। ये प्रारब्ध में प्राप्त हुई है, परंतु ये पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ जीवन क्या है? इसमें सम रहना। प्राप्त तो होगा, दोनों प्राप्त होगा। हम प्रायः क्या करते हैं? परिस्थिति बदलने का क्या प्रयास करते हैं, क्योंकि हम तो सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं। भगवान ने बोला है कहीं भी कि तुम जीवन भर यही कोशिश करते हो सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाए, मेरे बच्चे मेरे अनुकूल हो जाए, हाँ मेरी मदर इन लॉ मेरे अनुकूल हो जाए, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल हो जाए। हम तो पूरा जीवन क्या कर रहे हैं सोचो। भगवान कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते, समय दुखे समा सुख और दुखम, सम रहो सुख और दुख में। ये कह रहे हैं भगवान, ये सुख की चाबी है कि सम रहो। देखो सुख और दुख, पहली बात तो सुख और दुख भी नहीं है, भगवान भी कैसे बताएं, सुख और दुख तो होता ही नहीं है। वो कह रहे हैं, वो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भाव समझें। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तुम्हारे मन इंद्रिय शरीर के प्राप्त होंगी तुम्हें, परिस्थितियां सुखी दुखी होना तुम्हारी मूर्खता है। परिस्थितियां प्राप्त होना प्रारब्ध से होगा, होगा ही होगा, हर एक को होगा, पर उसमें सुखी या दुखी होना यह तुम्हारी मूर्खता है। जो इसमें सम रहेगा, जो द्वंद्वों में नहीं रहेगा, वही अमृत तत्व का अधिकारी होगा। सो अमृत तत्वाय कल्पते, वही मुक्ति का अधिकारी होगा। से द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ता, ये द्वंद्व से रहित होगे तो भक्ति करोगे। और तुम्हारी दृष्टि अगर सुख अनुकूल बनाने के लिए हर चीज को, मेरा शरीर ठीक रह जाए, मैं तो हैरान हो, तो भक्त भी जो ऐसे विचलित होते, मेरा शरीर ठीक हो जाए, क्यों हो जाए शरीर ठीक, इतना क्या आपको फरमा सकती ना हो शरीर ठीक, आप भक्ति करो। अनुकूल बनाने की चेष्टा जीवन में, जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा सबका प्रतिक्षण का क्या उद्देश्य है, अंदर झांके, एक ही उद्देश्य है सब कुछ मेरे अनुकूल रहे। भगवान कह रहे हैं अनुकूल प्रतिकूल में तुम सम रहो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें सुख से या दुख से निश्चय कर लो, मनुष्य जीवन मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सुख भोगने के लिए कौन सा स्थान है, स्वर्ग, दुख भोगने के लिए नरक, और सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए मनुष्य शरीर में। क्या कोई मछली या चिड़िया या जिराफ या टाइगर ये क्या समझ सकते हैं कि सुख और दुख से ऊपर उठना है, ये क्या करेंगे, ये हर चीज को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा में मर जाएंगे, मरते हैं, मरेंगे। हम भी यही कर लें तो हम में और पशु में क्या भेद है, पशु यही कर रहा है ना, चिड़िया की क्या कहानी है, एक घोंसला उसमें चार चूजे तो चू चू करो मर जाओ, हमारा क्या, वही घोंसला चार चूजे हम अपने मिला के चू चू करो मर जाओ। तो चिड़िया में और एक हम सो कॉल्ड डिवोटीज में क्या भेद हुआ, वही अनुकूल बनाने की चेष्टा, चू चू चार लोगों में बस चैचें बस। ये तो योगी का लक्षण नहीं है, हम योगी हैं, योगी भक्ति योगी भक्त भक्ति योगी योग योग, जो राजी हो जाता है सुखी परिस्थिति में आने से, कितना खुश है कितना अच्छा है, जो राजी हो जाता है दुख में एकदम दुखी हो जाता है, तो वो तो भोगी है, वो योगी कैसे हुआ, तो परिस्थितियों का भोग कर रहे, वो तो भोग कर रहे, वो योगी कैसे हुआ, तो हम तो योगी है। ये भूल जाओ कि अभी गृहस्थी है, स्त्री पुरुषों को यंग ओल्ड भक्ति करने आए हो, तो समझ लो योगी हो, योगी का मतलब इसमें सम रहना। ये प्रथम शिक्षा, ये प्रारंभ बोलिए गीता, यहाँ से 2:15 तो प्रारंभ ही बोलेंगे, सम और सुख दुखम हम निश्चित कर लें, मैं आत्मा हूं, मुझे केवल भगवत प्राप्ति करनी है। देखो बड़ी सीधी सी बात है, इज अ स्ट्रेट रोड टू कृष्ण, इज अ वेरी स्ट्रेट रोड, जैसे हम दराजा के पास जाना है, वेरी स्ट्रेट, इफ आई वॉन्ट टू गो आउट वेरी स्ट्रेट रोड। अब क्या है, अब चेतन क्या हुआ, अच्छा सुबह फिर ये अनेक वो सुख दुख लाभ पराजय के डाइवर्जन हैं, वो बोर्ड लगे हुए हैं, सुख हेयर लाभ हेयर पराजय, वो मैं मत जाओ, तुम सीधा चलो, तुमने क्या करना है सुख दुख से, मिलना कुछ है नहीं, जीवन बर्बाद करोगे, पाप साथ में लगेंगे, कुत्ता फिर बनोगे। सुख दुख में जो सम नहीं रह रहे, तो उनके हमारी भाषा में समझने के लिए बोले खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा आना, ये समय मिला तुम सुख दुख रहे नहीं, और साथ में कर्म फल प्रत्येक क्षण का मिला तुम्हें, ये बात भूलना मत, ये मनुष्य जीवन पिकनिक के लिए नहीं है, ये दिस इज नॉट मेंट, ये तो एंजॉय करो ना, तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे एंजॉय, सब कुछ भगवान ने किस लिए बनाया, भगवान ने इसलिए बनाया ताकि तुम सम रहो, तुम अनुकूल रहो, सब कर रहे हैं, कोशिश करो या तुम एंजॉय भोक्ता बनो। भगवान कह रहे हैं कि सुख में परिस्थिति का भोक्ता मत बनो, योगी बनो। गीता क्या बोलती है याद है किसी को? कैसे यत् करोषि यत् तपस्यसि। हम तो कह रहे हैं तपस्या भी करो तो मेरे लिए करो। ये कौन सी तपस्या है सबको अनुकूल करना अपने लिए? तपस्या है इससे बड़ा भोग क्या होगा? 24 घंटे हमारी यही दृष्टि है कि सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाए, जैसे मैं चाहता हूँ। मतलब मूल तो यही है सार, सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाए, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरी मम्मी और फादर इन लॉ, पत्नी तो खास, सब अनुकूल हो जाए। यही कौन सी भक्ति है बाबा? मतलब यत् करोषि, जो करो मेरे लिए करो। हम क्या करें? जो करते हैं अनुकूल परिस्थिति करने के लिए कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? समय का दुरुपयोग, मानव जीवन का दुरुपयोग। मानव जीवन मिला है सुख और दुख। पहली बात तो सुख और दुख होते हैं, पहले ये समझे कि दुख सुख और दुख से ऊपर नहीं उठना। क्यों नहीं ऊपर उठना? क्योंकि होता ही कुछ नहीं है तो ऊपर क्या उठोगे? जब कोई चीज है, बोलो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर है, फिर जाएंगे सोचेंगे। सुख दुख जब कुछ होता ही नहीं है तो इससे ऊपर क्या उठना है? ये तो मन की कल्पना है। भगवान कह रहे कल्पनाओं से ऊपर उठ जाओ कि भाई बुद्धियां लगाओ, तो वो कल्पनाएं मत, कल्पनाओं में मत घूमते रहो। ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये मेरे अनुकूल, ये मेरे प्रतिकूल। 16 अध्याय में राक्षस के, डेमोनियक, आसुरी व्यक्ति के लक्षण बताया कि मैं जीत जाऊंगा, मैं दान दे दूंगा, मैं खुशी रहूंगा। ये असुर के लक्षण, हमारा भी यही होता है, मैं दान दे दूंगा, मैं खुशी रहूंगा, ये मेरा अनुकूल हो गया, दुश्मनों को हरा दिया, यही बोला गया। पर ये 16 अध्याय, ये राक्षस के लक्षण असुर के। हमने क्या करना है? सुख दुख की परिस्थितियां प्राप्त होंगी, कोई डिनाई तो नहीं कर सकते, तो क्या करना है हमको? उसमें हर परिस्थिति को हमने सामग्री रूप में लेना है भगवान की पूजा की। किसमें को? सम रहना है, सम रहना है। सब चीजें सामग्री रूप में लेनी है सम रहने के लिए। सम नहीं रहोगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, दृढ़ता से भक्ति भी नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। इस पे तो जैसे हमने 1863 जब सुना, उसके बाद हमने ये समझा कि हम पार्टिकल ऑफ सर्विस है, एक कण है सेवा के। समझा? आज समझे कि मेरे को सम रहना है सुख और दुख। भगवत गीता बोल रही है अगर आप सुख दुख में सम नहीं हो तो हानि है ही है, लाभ भी हानि है। क्यों लाभ? क्यों हानि है? लाभ इसलिए हानि है क्योंकि आप सम नहीं हो। तो आपको हम ना बहुत विस्तार से बताते हैं होता क्या है। जिसकी केवल भगवान की प्रसन्नता की ओर दृष्टि है तो सुख दुख की परिस्थितियां आएंगी, पर उस भक्त में भोगने की इच्छा नहीं है कि मुझे कोई परिस्थिति का भोग करना है, तो आएंगी और चली जाएंगी और संस्कार नहीं पड़ेगा उसके ऊपर ना वो भोग, क्योंकि आपकी भोग करने की इच्छा नहीं है। तो जैसे आप इतनी दुकान, अभी आप रास्ते जाए इतनी दुकानें आई तो आपके भोग की इच्छा नहीं है तो कितने आए चले गए, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन किसी की शराब पीने की इच्छा हो उसके वो आ जाए, वो यहाँ पे आगे सोचता रहेगा वो दुकान देखे वापसी में ले लूंगा, जो भी है। तो जब आपको अनुकूल देखो सबको मिलेंगी परिस्थितियां अनुकूल, तो यदि आपकी सुख बुद्धि है उसमें तो अनुकूल परिस्थिति का भोग करोगे। रैलिश मत करो, अनुकूल परिस्थिति को मत करो, सम रहो। रैलिश करोगे तो पहली बात तो पाप लगेगा, दूसरी बात संस्कार जम जाएंगे। पहले भी हैं संस्कार, तभी तो रैलिश करने का सोच रहा फैमिली लाइफ या कोई भी चीज। तो एक तो पाप, ऊपर से भोग, ऊपर से संस्कार। संस्कार जो पड़ेंगे अनुकूलता के भोग के तो वो भगवान के धाम में तो पूरे होंगे नहीं। वहां तो सब कोई राधा कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य करता है, तो उसके भोग के लिए क्या करना, क्या होगा फिर? अमृतत्वाय कल्पते, नहीं होगा, पुनः आना पड़ेगा जन्म मृत्यु। किस लिए क्या किया था? तो मैं अनुकूल परिस्थिति का भोग करने का विचार था मेरे मन में, तो मैंने किया। और जिसकी सुख बुद्धि नहीं है उसको भी अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, आई चलेगी। सोचो कितनी खतरनाक है चीजें, अनुकूल। बस मैं तो यही चाहता हूँ, बस मेरे घर में सब ठीक रहे। इसके अलावा भी कुछ होता है संसार में? सारे संसार की सारी चीजें तुम चाहते हो, उसके बाद बस मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ। आई हैव ओनली फ्यू बिलियन डिजायर्स। अनुकूल परिस्थिति, जब पैसा प्राप्त होता है या वाइफ हमारे अनुकूल है, बच्चे अनुकूल, क्या करते हो? होगी तो करते हो, तब तो क्या करते हो? आप यत्क्रोशी करते हो कि जो करते हो मेरे लिए करो। भगवान कह रहे हैं ना यत्क्रोशी, ये भी बोल रहे हैं ना पांचवें ग्रह में, काहे न मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय अपि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। संग छोड़ के आत्मशुद्धि के लिए जब अनुकूल होती है परिस्थिति, पत्नी बच्चे, तो ये आत्मशुद्धि के लिए करते हो। तो बोल रहे करो केवल आत्मशुद्धि के लिए कार्य। इसमें एक उदाहरण हमें अच्छा लगा था, क्योंकि वह पैसे की बहुत समस्या था मालूम है, पर गुरु गुरान कृपा से इनके पास थोड़ा धन आना शुरू किया। तो ये तो ना कि अपने कोई सूट पैंट लेने बैठ गए, कुछ भी नहीं किया हमने, सेवा में लग गया। ये है अनुकूल परिस्थिति में भोग ना करना, सुख बुद्धि ना होना। इन्होंने नहीं किया सुख बुद्धि, आप देख लो इनको, हमें बहुत अच्छी लगी। हम अपने आप को देखें, हमारे पैसे बढ़े, हमारी पत्नी अनुकूल, हमने क्या किया? भोग किया, और क्या करा? जानवर भोग, जानवर क्या करता है अनुकूल परिस्थिति? गधे को गधी मिलती है अनुकूल तो क्या करेगा? भोग करेगा। चिड़िया क्या करेगा? चूजे मिल गए चेंचे करेंगे, बस यही है। आत्मशुद्धि थोड़ा कर रहे, इन्होंने ठीक किया, इन्होंने आत्मशुद्धि के लिए कहा है। इन्होंने बड़े बड़े थाल से जाकर भक्तों को भेंट अर्पण करने शुरू, बड़ी अच्छी बात। या तो हम वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अनुकूल परिस्थिति का उपयोग है, बहुत अच्छा। देखो ये जीवन ठाकुर जी को रिझाने के लिए मिला है। तुम अगर अनुकूल परिस्थिति में रचे पचे रहोगे तो जो अनुकूल जीवन है वो अनुकूल परिस्थिति का भोग करने में खर्च हो जाएगा। अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल मतलब मेरी पत्नी मेरे अनुकूल है, बच्चे धन सब कुछ अनुकूल है, तो उसी का भोग करने का जीवन खर्च मिला गया तुम्हें। तुम्हें तो अमृतत्व कल्पते हो तुम, अच्छा सुख दुख में सम तो तब रहेंगे जब कभी हमारे जीवन में कभी कभी पता चला कि ये भी हम करना है। हाँ, प्रथम बार तो हमें पता चला, अच्छा मुझे सम रहना है, तो अर्जुन को बोला गया था, अर्जुन को नहीं बोला गया, हमें बोला जा रहा है सम रहो। आप कहोगे मैं तो गृहस्थी हूँ, अर्जुन क्या था? आप तो क्लास में यहाँ बैठ के क्लास सुन रहे हो अच्छे से आराम से एक्सप्लेनेशन। अर्जुन को क्या किया गया? सीधा करोड़ों करोड़ों युद्ध में आए सैनिक, वो एक से एक जो तिमिंगला मछली के समान है, तिमिंगला माने बड़े बड़े समूह को निकल जाए। युद्ध में रहने के बाद इतनी भीषण परिस्थिति में भगवान कृष्ण का प्रवचन देती है। देखो युद्ध किस लिए होता है? हार जीत के लिए, लाभ हानि के लिए। तुम ना युद्ध करो, हार जीत का मत सोचो। लाभ होगा तुम्हें, कभी किसी को ऐसा बोला होगा युद्ध के समय किसी को कभी भी, तुम लाभ हानि मत सोचो, जय पराजय कुछ मत सोचो। तो अर्जुन को उस स्थिति में बोला जा रहा है कि तुम ये करो, गीता अर्जुन को ही सुनाई गई थी ना। हम लोग उतनी भीषण स्थिति में शायद कभी भी नहीं होंगे, एसी में बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास, अच्छे कपड़े, बढ़िया मोबाइल सब करते हैं, तो उसमें समझने के लिए बोला जा रहा है। ये मतलब हम तो गृहस्थी, गृहस्थी तो अर्जुन भी है, वो यार कहां बोला गया अर्जुन हमारे, कहां बोला जा रहा है? धाम में रह के सुनने को मिल रहा है। अर्जुन को धाम कुरुक्षेत्र धाम है ठीक है, पर बाकी सब कितने विकट परिस्थिति थी, फिर भी बोला जा रहा है सम रहो। और सिद्धिया असिद्धियों इसमें बोला गया था कि कोई चारे कोई कार्य सक्सेसफुल हो या ना हो, परेशान मत हो, सम रहो, भक्ति करो। एक बार आप गांठ बांध दो, मेरे को केवल भक्ति कर दी, मेरे को केवल भगवान की प्रसन्नता के कार्य, मुझे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, मुझे लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं, मुझे जय पराजय से कोई लेना देना नहीं। जय पराजय और हमको बताएं, सिद्धिया सिद्धि जय पराजय प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मतलब है? हम तो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, हमने क्या करना है, अर्जुन को क्या सुनाया गया, हमें तो अपने से मतलब है ना। हम बड़े बीमार हैं, ठीक है कोशिश तो करोगे ठीक करवाने की, हम भी कहते हैं करना ही चाहिए, हम बोलते हैं बेस्ट से बेस्ट प्रयास करो, परंतु अगर ठीक नहीं हो रहा तो विचलित मत, उस परिस्थिति में रहकर भजन करो भक्ति करो, विचलित नहीं हो। मान लो तुम्हारी प्रारब्ध में तुम्हारा असाध्य रोग हो गया, हो गया तो क्या करो, रोते रहो, दुख का भोग करोगे, या तो सुख का भोग करते हो या दुख का भोग, हर समय जो मिलेगा उससे बात शुरू। क्या करते हैं जो दुखी होते हैं, भाई मेरी पत्नी की बात, मेरी बहन क्या मदर क्या होते हैं आपको रिलेशन जो फादर है, बहू क्या होती है, डॉटर इन बहू की कहानियां सुनो, दुखी हूँ मेरा शरीर की सुनो, और कहते कितने कितने घंटे महीने हफ्ते साल यही दुख का भोग करने में। अब इस परिस्थिति में कैसे भक्ति करेंगे आप पूछना चाहेंगे, हम बताते। जब दुख आता है तो दुख के मूल में जाएं कि दुख क्यों आया, तो दुख का निवारण मिले, तुम तो दुख का भोग कर रहे, दुख का भी भोग होता है जैसे सुख का होता है, तो उसके मूल में जाएं। मूल क्या है, मूल है स्वसुख वासना, मेरी स्वसुख की इच्छा आशाएं जो हैं यही दुख के रूप में मुझे मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा, मेरी स्वसुख की अपनी कृष्ण के प्रीति, कृष्ण प्रीति वाचा कारवाम प्रेम आपना भोग वांछा काम वांछा का नाम काम आपने स्थिति वांछा। तो दुख के जब आए तो बोलो क्यों आया, क्योंकि मैं भगवान से विमुख था, अब विमुख नहीं आऊंगा, दुख आया ना तो इसी परिस्थिति में रह के मैं अच्छे से भजन, यह है दुख का भोग ना करना, यह है दुख का सदुपयोग करना, दुख का नहीं दुख में परिस्थिति है, दुख तो कुछ होता नहीं है आप समझ चुके हैं, सुख भी कुछ नहीं होता दुख भी कुछ नहीं होता, जब ठाकुर जी आनंद तो सुख दुख क्या होता है, तो भोग नहीं करना, जो राजी हो जाता है सुख में परिस्थिति से वो तो कुत्ता भी होता है, तो कुत्ते को पत्थर मारो प्रतिकूल परिस्थिति कुत्ते की क्या है, तो पत्थर मारे तो वो उसे अराजी होता है, माने नॉन राजी माने इज नॉट कंफर्टेबल विद इट। सिमिलरली हमारा भी अगर है द्वंद्व मोह निर्मुक्त, इन द्वंद्व से रहित होंगे तो दृढ़ता से भक्ति करेंगे, क्योंकि ये तो द्वंद्व तो जीवन भर रहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल वो कितने रहेंगे, तो लेफ्ट और राइट ही घूमते रहोगे, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करोगे, और अगर आप अनुकूल परिस्थिति भोगना चाहो उसका स्थान भूलोक तो नहीं है, तो प्राप्त कैसे होगा, उसका स्थान क्या है, स्वर्ग, दुख में परिस्थिति का स्थान नरक है। ये सुख सुखी दुखी होके मैं मेरा मूड ठीक नहीं है, वो क्या है, अब दुख का भोग कर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, मूड ठीक नहीं कर ये सब जो कर रहे हो ना, ये देखने बचकाना है, ये बचकाना है ना, स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा ना, स्वभाव बिगाड़े जा रहे हैं, दिन रात स्वभाव बिगड़ रहा है, समय वेस्ट हो रहा है, और जिस क्षण से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है उस क्षण को हम मूड स्विंग में हम व्यतीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, पहली बात है हमारा समय सम रहना है, ये समझ जाए आप, इसके बिना तो प्रारंभ नहीं होगा। जो भक्त है उसके लिए, योगी के लिए जो लाभ है वो भी हानि हो सकता है, क्योंकि अगर उसका भोग बुद्धि रहेगी, और जो हानि है वो भी लाभ हो सकता है अगर भोग बुद्धि नहीं होगी, तो हानि भी लाभ है भक्त के लिए और लाभ भी हानि है भक्त के लिए अगर भोग बुद्धि है, भक्त के लिए तो क्या हानि होगी, उसका प्रत्येक क्षण तो आनंद बढ़ रहा है, उसको कौन सी क्या हानि, उसको पता मेरा लाभ ही लाभ हो रहा है, प्रत्यक्ष है उसको सब कुछ, हम भक्त हैं तो प्रत्यक्ष है सब कुछ, भक्त कौन है जो द्वंद्वों से मोहित नहीं होता, पशु कौन है जो द्वंद्वों से मोहित होता है, ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है छोटी बात है, छोटी बात है, ये सुनने को मिलता है सब कुछ, तो पता तो चला कि हमें करना क्या है। मुझे सुख से दुख से कोई लेना देना नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल से कोई लेना देना, सीधा चल रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए बस। अब यहाँ पे परिक्रमा है तो वहां तो परिस्थिति तो प्रतिकूल रहेगी, यहाँ को कुछ रहने को खाने को ढंग से नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ आया, यहाँ भोग के लिए आया था, यहाँ पे भी माया नवदीप को भी नहीं छोड़ना था। नाशवान को महत्व देना है, संसार के नाशवान व्यक्ति वस्तु को महत्व देना, यही बंधन का कारण है। हम मुक्त नहीं है, क्या है अब नाशवान को महत्व दे दो, नाशवान विचार, नाशवान व्यक्ति, ये मेरे से अच्छे से बात करना तो नाशवान व्यक्ति हैं, उनको महत्व दे दे, यही बंधन है। और नाशवान को, पदार्थों को, व्यक्तियों को अपना मानना, यही बंधन है। इनको अपना नाम मानना, यही मुक्ति है। अच्छा एक बात बताओ, आपके 100 रुपए या कुछ भी गिर गए तो दुख है या है, तो पूरा बैंक लूट गया नामीबिया में, आपको खुश हुआ? तो अपना नहीं माना, पदार्थ तो वो भी है ना कि नहीं है, वहां भी करोड़ों रुपए दुख चले गए। मान लो रशिया में अगर हमारा कोई हो गया तो हमें तो कुछ नहीं है उससे, क्योंकि अपना नहीं माना हुआ। और अपने बेटे की साइकिल का टायर भी टूट गया तो दुख, तो अपना माना है किसी पदार्थ को, ये बंधन है। व्यक्ति को अपना माना है, ये बंधन है, नहीं माना तो मुक्त हो। अच्छा मुक्त होने से कुछ करना नहीं है, जो कर रहे हो वो नहीं करना, मुक्त होने के लिए करना थोड़ा स्वतः मुक्त हो, तुम मुक्त हो स्वतः, नित्य मुक्त, नित्य तुम्हारी स्थिति है कि तुम मुक्त हो हमेशा, ये तुम्हारे किसी को अपना मानने की वजह से बंधन क्या माना हुआ है, किसी को मत माना तो तुम मुक्ति हो। अच्छा आपको भी सम रहना है, अच्छा ऐसी परिस्थितियों में आपको इसकी एक सीक्रेट बताए, आपको बहुत खुशी होगी जान के, आपको ना कोई मेहनत नहीं करनी, आप सम हो या बुले हो सिर्फ मेहनत नहीं करनी कि मजदूरी हल नहीं जोतने, आप सम हो तो ये बोले हो, आपको ये याद दिला रहे हैं सिर्फ, इतनी देर से करना ढूंढना है कुछ, भक्ति सबसे खूबसूरत है, इसमें करना कुछ नहीं होता, बस जो कर रहे हैं इतने अनाधिकारिक अभ्यास बिगड़ा हो उसको छोड़ दें बस। मतलब अगर आपकी भाषा में बोलो झल मारना बंद कर, तो सम तो हो, होना थोड़ा है, कोई अननेचुरल स्थिति में आने के लिए थोड़ा बोला जा रहा है आपको, आपको बता दें कैसे सम हो, महाविष्णु के शरीर में सम हो क्या नहीं हो, कोई किसी संसार से कोई कुछ नहीं, वैसे पड़े अभी भी ऐसे ही हो, आपको लग नहीं रहा बस यही। अच्छा है चलो, आपको 15वें 5वें अध्याय से कुछ समझा है, ये देखो 5वें अध्याय का 15वां, अज्ञानेन आवृतम, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, क्या बताया जा रहा है, जब सुख हम सम हैं, ये ज्ञान ना अज्ञान है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ये जो अज्ञान ने कि मैं सुखी हूं दुखी हूं, इसने ज्ञान को ढक के रख दिया, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः, इसकी वजह से ना मोहित हो गए जी जन्तवः, भगवान गीता में बोल रहे जन्तवः, अर्जुन को इंसान नहीं बोल रहे, जंतु की तरह बोल रहे, जानवर होता ना जैसे, कि क्या है ये मोहित हो गया जन्तवः, जैसे पशु मोहित हो, तुम ऐसे मोहित नहीं होना चाहिए। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः, जन्तवः बोल रहे मानुषादिनी बोल, जंतु जैसे जंतु मोहित हो गए, तुम भी वैसे जंतु की तरह मोहित हो गए, अज्ञान ने तुम्हारे ज्ञान को आवृत कर दिया, एकदम सम हो, होना नहीं है, करना धरना कुछ नहीं है, जो कर दे रहे हो उसको बंद कर दो बस। ये देखो, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, जिनका मन समभाव में स्थित है उन्होंने इस जीवन जीवित अवस्था में ही सारे संसार को जीत लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगला श्लोक 5वें अध्याय का 20, बहुत बहुत जरूरी है। न प्रहृष्येत। प्रियम प्राप्य न उद्विज्येत प्राप्य च अप्रियम। स्थित बुद्धिर असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित। जो पुरुष प्रिय वस्तु को व्यक्ति को प्राप्ति हर्षित नहीं होता। हम हर्षित होते ना, कितने खुश होते, आए बेटा गले लगा लो कुछ, एक चटकारा बेटा बोलने के लिए सत्यानाश हो गया तुम्हारी 20-10 साल की भक्ति बेटा हो गया, करना कुछ नहीं उसके बाद, वो हो चुका। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु को प्राप्त करके शाही पनीर हर्षित मत हो, प्राण से प्राप्त हो गया, हर्षित मत हो, हर्षित हो गए सुख बुद्धि आएगी, ये क्षण बर्बाद हो आने वाले जीवन बर्बाद। छोटी सी बात, छोटी छोटी बात। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विज्येत, उद्विग न मत हो, जो तुम्हारे अनुकूल व्यक्ति व्यक्ति वस्तु नहीं। न उद्विज्येत च अप्रियम, अप्रियम माने जो मेरे को अच्छा नहीं लगता, जैसे मेरी पत्नी मेरी बात ना माने, मेरे बच्चे मेरी बात ना माने। आजकल की मेरे आजकल के बच्चे बात नहीं मानते, आप क्यों चाहते हो ये हमें बताओ, आपकी बात क्यों माने। अब बाप 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 डेजिग्नेशन का भोग करना चाहते हो, वास्तविकता तो ये पत्नी मेरी बात माने, वो ये इससे बात करे उससे ना करे, इस समय ये करे उस समय वो करे, क्यों, क्योंकि मैं पति सुख का भोगता अनुपति पति रूपी अनुकूल परिस्थिति का भोगता रहना चाहता। ये यत्क्रोशी हो रहा है, ये संज्ञान त्यक्त्वा आत्मशुद्ध हो रहा है, आत्मशुद्धि के लिए कार्य संगम त्यक्त्वा अटैचमेंट छोड़ के किसी रॉबर्ट की तरह चलाना चाहते हैं पत्नी को और पति को एक दूसरे को रॉबर्ट की तरह, बोले संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, संगम त्यक्त्वा अटैचमेंट छोड़ के आत्म केवल आत्म कैसे करना है, कायन मनसा इंद्रिय अपि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विज्येत प्राप्य च अप्रियम। स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि संशय रहित होकर स्थिर बुद्धि रहना है इसमें, कि हर्षित नहीं हो एक छोटे मोटे चटकारे को देते हो, क्योंकि गोलोक में तो मिलेगा नहीं ऐसे, यहीं पे आओ ना फिर क्या करोगे, यही स्थान है, ये सब जल मारने के तो यही स्थान है, कैसे गले लगाते जैसे मतलब साक्षात राधा रानी को गले लगा रहे हो या मतलब महाप्रभु प्राप्त हो गए, भक्तों की कहानी है, ये नहीं कि सड़क वाले की कहानी है। वो टेंशन है, क्या टेंशन, विशाल ही मेरी बच्ची बेटी, टेंशन क्या होती है, ये प्रहर्षीय तो हो रही हो उद्विग्न क्या है, ये सब भक्त मनो भक्त है कि भक्त क्या है, स्थिर बुद्ध न प्रहर्षीय प्रियम प्राप्ति, खुश नहीं होना प्रिय परिस्थिति को प्राप्त करते, हम तो खुश कहते ना फूले नहीं समाते, अभी तो हम फूले नहीं समाओ फिर बाद में यमराज फूले नहीं समाएंगे तुमको दंड देने में, ठीक नहीं है तो हम अभी ऐसे खेत खेत में बोल रहे हैं। अगला श्लोक ले लो भगवत गीता, बाह्य स्पर्शेश्व असक्तात्मा विंध्यत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्रुते। बाह्य स्पर्श, ये जो सुख तो कह रहे हैं बाहर के हैं, बाह्य स्पर्श है, ये आउटसाइड वर्ल्ड है, ये मुझे नहीं हो रहा, समय को कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है तो मैं मूर्ख हूं, सरल शब्द है, सरल अंत वो है डेफिनेशन, सुखी भी हो रहा हूं तो मूर्ख हूं, दुखी भी हो रहा हूं तो मूर्ख हूं, हम तो खुश होते हैं, मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम्हें राधा रानी के सुख से तो तुम खुश हो ही नहीं, ये तो श्योर है, इसमें तो कोई संदेह तो नहीं होगा। तो बाह्य स्पर्शेश्व, दूसरा क्या है, विंध्यत आत्मनि यत् सुखम, माने बाहर के विश्व में आसक्ति रहित अंतःकरण जो साधक है, आत्मा में जो स्थित जो आनंद जो अंतरात्मा, विंध्यत आत्मनि यत् सुखम, जो आत्मा का सुख है, ये बाह्य स्पर्श है, भेद समझो, ये सुख दुख है, ये बाह्य स्पर्श है, बाह्य आउटसाइड। जैसे अभी रूम में है तो बाह्य चीजें हो रही हैं, रूम में नहीं हो रही। उस वजह से जो मेरा सुख है वो तो केवल ठाकुर जी से ही प्राप्त होगा। वो आत्म सुखम, कैसा सुखम अक्षय अश्नुत है, वो सुख जो जिसका कभी क्षय नहीं होता वो प्राप्त होता है। किसको? बाह्य स्पर्श जो नहीं से कोई मिले ना देना नहीं। मेरी पत्नी अनुकूल है, प्रतिकूल है, व्यभिचारी है, नहीं है, ये है वो है, तुम्हें क्या करना है? तुम ये यही सब के हिसाब किताब अकाउंटेंट हो गया कैसे? इसलिए आए थे संसार में, मनुष्य जीवन अकाउंटेंट बनने के लिए मिला था कि भाई यही अकाउंट लेते रहो, ऐसा है वो ऐसा है ना। चार लोगों के अकाउंट जरूर रहने, पत्नी बच्चे माँ बाप के, उनका तो अकाउंट 24 घंटे रखो, इसको ऐसे हो, ये मेरी परिभाषा के अनुसार नहीं चल रहा। सुखम अक्षयम अश्नुत है, सुखम अक्षयम अश्नुत, खत्म ना होने वाला सुख वो मिलेगा किसको? जो बाह्य स्पर्श को छोड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम, आपको नहीं छोड़ेगा। ये जो बाहर वाले हैं स्पर्श, बाह्य स्पर्श, अगले श्लोक में देखिए। तभी हमने एक भक्त को बोला कि हमें पूछा गीता पढ़ते हो, कहते हैं हाँ। उन्हें कौन सा जाय पढ़ लिया, ऐसे ही पढ़ दो कभी कुछ समझ कैसे आएगा आपको? एक श्लोक है, हम आपको एक के बाद एक श्लोक बता रहे हैं। अगला स्पर्श देखिए, पहला था बाह्य स्पर्श के बाद है अगला श्लोक, ये ही संस्पर्श, फिर स्पर्श, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिया एवते। ये जो इंद्रियों के सुख हैं, अच्छा खा लू रेस्टोरेंट में खा लू, है ये ब्रांड के कपड़े, ये तो इतनी मूर्खता है, ब्रांड के भी कपड़े डालना है, ये भी सुख है। ये जो संस्पर्श सुख जो है, ये जो भोग है, ये जो भोग बुद्धि वनों को भासते हैं, ये वास्तव में सब दुख के हेतु है, ये बोला जा रहा है श्लोक में। और ना तेषु रमते बुधा, ये सबको समझ आ गया होगा मतलब, ना तेषु उनमें रमते, रमण नहीं करता कौन? बुधा जो बुद्धिमान। कौन बोल रहे हैं? श्री कृष्ण साक्षात। जो भोगी लोग मतलब जिनकी भोग बुद्धि है वो बाह्य स्पर्श में सुखी और दुखी होते हैं, बाह्य स्पर्श, बाह्य लोगों ने ऐसे बोल दिया, ऐसे भी बोला। ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान है, हैं, जिनको भक्ति बुद्धिमान है, उनमें रमण नहीं करते जो विवेकी पुरुष हैं। देखो ये जो विवेक है कि तुम आत्मा हो, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, ये विवेक अलौकिक है। अलौकिक माने स्पिरिचुअल, इसका अनादर मत करो। अब अलौकिक विवेक का अनादर करके लौकिक बाह्य स्पर्शों का आदर करोगे तभी तो उसमें रमण करोगे। ना तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करते। अब हम देखें कितने बुद्धिमान है, हम बोल रहे हैं और जो थॉट्स आ गार भाई समझ ही नहीं आती बात, फिर भी वो थॉट को इतना महत्व, इतना महत्व, जैसे कि पराशर मुनि ने बोला हो या व्यासदेव ने बोले हो, वो थॉट्स हैं आपके, हैं आपके वही गार भाई थॉट्स, रूटीन गार भाई थॉट्स हैं सारे। क्या है रूटीन? क्या है? बाह्य स्पर्श को ही महत्व देना, सुख बुद्धि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में होना, ठाकुर जी की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता नहीं रखना, गुरु की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता रखना, जो पशु का है, इसी को गार्बेज कहा जाता है। ऑल थॉट्स आर गार्बेज विदाउट एक्सेप्शन। और देख लो फिर 24, यही पांचवा अध्याय चल रहा है। जो अंत सुखो, अंतर, जो अंतरात्मा में सुख लेने वाला है, अंतरात्मा में रमण करने, उसको शांति प्राप्त होती है, उसको भक्ति प्राप्त होती है। जो भीतर में सुख लेता है, बाहर में नहीं, बाहर में नहीं। दुख का भी भोग मत करें, हम ये कहेंगे दुख भी भोग मत करें कि दुखी हो दुखी हो, सबको घर में तो सबको पता होना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि मैं तुम्हारा वो दुख का प्रचार होना चाहिए घर में, क्योंकि मैं बीमार हूं, दुख का बहुत कर रहा हूं। ऐसा प्रैक्टिकल बताएं, दुख के बारे में बात भी मत कर बीमारी के बारे में, अगर यह करना ठीक हो आप तो चल फिर सकते हो। तो बोले मैं अपने चल रहे, क्यों चलना है आप, भक्ति करो, चल रहे क्यों भक्ति कर रहे, आप बिना चले भक्ति नहीं कर, तो दुख का भाव नहीं करना है, मैं दुखी हूं, मैं दुखी नहीं, मैं बीमार हूं, बात नहीं करनी कोई बीमार हो, ठीक है गोली खाओ हो जाए ठीक, तो ठीक नहीं थे सिद्धि असिद्धि हो समा, ये है इसका मतलब, ये था हम बोलते ना ये अर्जुन के लिए ये है, तुमने कोशिश कर ली प्रयास करे ठीक हो, नहीं हो कोई बात नहीं, बोला मेरा टेस्ट ठीक नहीं है, क्या हो गया ठीक नहीं, शरीर मेरा खराब तो होगा ही से, कोई हमारे को हम तो बोलते हैं अब उम्र बढ़ते तो शरीर बीमारी इंक्रीज होंगी कम तो होंगी, बीमारी हमारी कोई पूछता तो कॉमन सेंस है, बढ़ रहे हो तो उसमें यूं बैठे रहोगे तो उससे कुछ होना तो है नहीं, भक्ति करो और भगवान का नाम लेना है, हृदय से पुकारना है, करना तो कुछ है नहीं, कहीं जाना नहीं है, नहीं चला ऐसे तो मत आए मैंने परिक्रमा में, नहीं आओ घर बैठ के खो, चलिए ठीक है तो आ जाओ, करना तो हृदय से पुकार रहे हैं, अनुकूल परिस्थिति का भोग नहीं करना, सम रहना है, ये प्रमुख शिक्षा है, प्रारब्ध मार्ग को अनुकूल परिस्थिति देंगे, हमने क्या करना है एक अच्छे भक्त की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह हमने अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमारा कर्तव्य क्या है सुख सुख दुख में सम रहना और उनकी प्रीति के लिए कार्य, हमने ये जो मिले ना मिले उससे क्या आपने हमने क्या करना, हमको सिर्फ सम रहना है, जो बोलोगे समा सुखम दुखम धीरम तो अमृतत्वाय कल्पते, वही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है, भक्ति का अधिकारी, इस समम जो शब्द है समम कृत्वा समत्वम योग उच्चते, ये गीता में बहुत जगह बोला गया, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, बहुत जगह बोला गया, योगा कर्मसु कौशलम, ये सबने सुना हुआ है योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म जो है वो योग है, क्या है कुशलता पूर्वक कर्म, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का भोग बुद्धि ना हो, अनुकूल की मेरे पिताजी ठीक हो जाए वो करना, दुखी रहना पिताजी ठीक वो तो नहीं होंगे, इसका कैसे करके हमको प्राप्त क्यों हुए हैं, हमारे पिछले सुंदर सुंदर चरण थे हमारे उसी का फल प्राप्त हुआ, दुख के मूल में जाएं, जब दुख में परिस्थिति लगती है उसके मूल में जाएं कि दुख है कि फिर मेरी सुख की इच्छा थी आशा थी व्यक्ति वस्तु से, तो भगवान ने ऐसे ऐसे दिए हैं फिर इनके साथ रहो दिखा दो कैसे सुखी हो सकते तुम्हारी इच्छा में अच्छे पिताजी चाहिए पति जी चाहिए, ऐसे ऐसे देंगे भगवान फ्रस्ट्रेटिव लाइक एनीथिंग यू कम बैक टू योर सेंसेस, ही विल गिव यू हस्बैंड एंड सच अ genius, give you a father like, ये ऐसे क्यों है फिर यही शब्द निकलेगा, नहीं तो sons देखो बहुत कुछ आना है जीवन में, बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ किए बहुत कुछ मिलेगा बाहर से, भीतर कुछ नहीं होगा कुछ नहीं, अर्जुन युद्ध में रहते हुए सम रहे, युद्ध में युद्ध युद्ध पता है क्या होता है, तीर लेके बैठे हैं वो गला कर रहे हैं जस्ट अबाउट टू किल यू, मतलब यू कैन डाई एनी मोमेंट, भगवान तब बोल रहे हैं तब भी सम, हमारे को बोला होता भगवान जी ने सारे बात कर रहे कैसी बात कर रहे हैं, बाद में प्रवचन बाद में करना मैं युद्ध कर रहा हूँ, जिस लड़ने गए सम रहो ऐसे सम चलाऊंगा कैसे, फिर गुस्सा नहीं आएगा अपने वही राउंड गार्बेज थॉट्स, समझ हमारे आज तक स्पिरिचुअलाइज समझ है तो उसका क्या मतलब है? अर्जुन की तरह नष्ट मोह स्मृति लब्ध प्रसादात्मना चुका, नष्ट मेरा मोह नष्ट हो गया, कोई मेरा पति पत्नी सब कोई है, कुछ नहीं है, कोई नष्ट मोह स्मृति लब्ध, मैं सम हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं सम स्मृति लब्ध, नई चीज नहीं मिलनी तो हम आपको नई चीज आगे देंगे, हम भगवान नहीं देंगे आपको नई चीज, कहीं हम तो सिर्फ पोस्टमैन उनका प्रेम पत्र जो है गीता आपको पहुंचा रहे हैं, लव लेटर भगवान ने आपको लिख के दिए कि सम हो जाओ, प्रेम पत्र मिलता है, पर्सनल प्रेम पत्र है ना, भगवान ने आपने भगवान ने आपको लिख के दिया, कुरियर किया आपको, सम हो जाओ तभी तो भक्ति के अधिकारी हो, अनुकूल करने की कोशिश मत करो, पहली बात तो कोई होंगे नहीं, कर लो करना नई बात मत कर लो, आज तक वो ही लोग अनुकूल कितना समझा रहे, मम्मी ऐसे हो जाओ, कोई ये किसी की मम्मी ऐसे हो जाओ, कोई पापा ऐसे हो जाओ, या तू ऐसे होती नहीं है, कौन हुआ है, वही परिस्थिति में रहते हुए अर्जुन से भी कम परिस्थिति होगी सबकी, भीषण भीषण काम है, क्योंकि आप घर में आओ ना तो आपको पता चलेगा मेरी पत्नी कैसी है, मेरी मम्मी कैसी है, मेरे पापा, अब जब घर की बात ऐसी याद है ना कि मेरी तो बड़ी विकट परिस्थिति, तो उसे अर्जुन को याद करते हैं, बैटल फील्ड कांट बी एनी वर्स देन अर्जुन। देखो यहां बोले कि जो इसमें सम रहता है समत्वम योग उच्चते उसको वो अधिकारी है, सम तो तब रहेगा जब हम अपने ये गोल बनाया होगा हमने कि हमने सम रहना है, हमने गोल ही नहीं बनाया, मैं तो अनुकूल ही चाहिए, मेरे को सबको साथ मेरे अनुकूल हो, सिद्धो आम आयाम भोगी सुख आम, गीता यही सोना हुआ असुर के लग जाए, मैं सिद्धु मैं सुखी हो जाऊं, मैं सब मेरे अनुसार, पहले गोल बनाए और कायन मनसा वाचा जैसे केवल आत्मशुद्धि के लिए कार्य करें। अब जैसे यहाँ परिक्रमा में आए हैं तो कैसे करेंगे आप कुछ सबसे इतने लविंग वे में बात करें, किसी के साथ अपनी दादागिरी ना करें, कोई बहुत लविंग है, बहुत लविंग आत्मशुद्धि करनी है ना हर एक्शन से, नहीं तो क्या होगा बहुत संस्कार, क्योंकि हमें किसी को अपने दास बनाना नहीं है, हम यहाँ किसी को दास बनाने नहीं आए, दास बनने के लिए आए नवद्वीप परिक्रमा, साधक दास है ना नवद्वीप में साधक दास, तो हम यहाँ नवद्वीप परिक्रमा में तो दास बनने के लिए, किसी को दास बनाना नहीं है, किसी को हम लोग स्वप्न में भी किसी को नहीं बोल सकते किसी को कि आप ये करो या हम कभी भी नहीं बोल सकते, आत्मशुद्धि के लिए आप जो करना चाहो कर लेते हो, वो सब ठीक है, हम तो सोच नहीं सकते कोई बात किसी को, कोई भी बात नहीं आप ये करो, नेवर यथा इच्छा से तथा फॉरएवर, तो हम यहाँ परिक्रमा में एकदम लविंग रहे, एकदम दास को साधक दास, यहाँ नवद्वीप में ही रहेंगे साधक दास के रूप में तो क्या दिल्ली में रहेंगे, तो नवद्वीप परिक्रमा में हम साधक दास के रूप में नहीं रह सकते, साधक दास मतलब सबसे वो सबसे छोटा होता है नवद्वीप, उससे छोटा कोई नहीं होता, संगम तत्व आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए कार्य करें, सार यही है कि हमारे जो भी काया पानी से शरीर से जेस्चर से जो भी क्रियाएं हो संगम तत्व आत्मशुद्ध है, गीता है ना 5:11 खोल लीजिए जब चाहे खोल लीजिए, संगम तत्व आत्मशुद्ध है स्वयं की शुद्धि के लिए, जितनी शुद्धि हमारी एक दृढ़ निश्चय से होती है उतनी असंख्य जप से नहीं होती, क्या दृढ़ निश्चय कि मेरे को केवल भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अनुकूल प्रतिकूल पति पत्नी बच्चे किससे कुछ नहीं करना, मेरे को सीधा भगवत प्राप्ति, इससे जितनी शुद्धि संगम तत्व आत्मशुद्धि जितनी शुद्धि इस एक दृढ़ता से होती है उतनी किसी चीज से नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, सिर्फ भगवत प्राप्ति, मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला, सिर्फ भगवान, ये पत्नी के लिए नहीं मिला, बच्चों के लिए नहीं मिला, ये संसार के लिए नहीं मिला, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए, और हम देख लेंगे हमारे पास ध्यान अगर आता है अनुकूल तो हम क्या करते हैं उसको, जब करोशी करते हैं तब हम कृष्ण प्रीति भाषा करते हैं तब उस समय क्या करते हैं, उस समय अनुकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, भोग करते हैं। तो सदुपयोग क्या है कि अनुकूल परिस्थिति में भी तो भोग बुद्धि ना हो, सेवा में हो, तो सामान्यता होगा नहीं। तो इसलिए लक्षण है केवल भगवत प्राप्ति और सम रहना है, मुझे संसार का भोग नहीं करना है, दो रोटी खाने के अलावा, जरा सी जगह सोने के अलावा जितना कुछ है सब भोग, सब भोग है। तो वो दो रोटी खाना ही भोग है, अगर उसमें रोटी तो नहीं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा वो भी भोग है, उसके अलावा तो सभी भोग, सभी कुछ भोग है, सब कुछ भोगी और योगी। ये एक ऐसा पहलू है गीता का जो हमें लगता है कि भक्त समाज में भी कोई नहीं जानता, प्रैक्टिकली लिविंग समय समत्वम योग उच्चते, प्रैक्टिकली लिविंग, प्रैक्टिकल उससे दया सिद्ध हो तो हम भी आपको संस्कृत की ऐसे व्याख्या में आपको समझ ही नहीं आएंगे, आप बोल देंगे उससे आपको मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। सिद्ध मतलब सक्सेस और फेलियर, आप बीमार हो कोई बात नहीं करती, आज सत्य रहे तो सब कुछ है कि नहीं, सबको जो कुछ अध्यात्म सुना था सुनना है सुनेंगे, आज के सत्र में सब कुछ ऐसे सभी के लिए सभी सत्रों में ही होता है, परंतु आज हमें लगता है कि अगर हम कोई भी सीरियस हैं तो उसको सब चीज में भक्त प्राप्त हो गए। आपने अपने समय यहाँ पे किया, आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।